ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
चतुर्थ अंक, प्रथम दृश्य। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी। अनंत देवी बोली, क्या कहा? विजया ने कहा, मैं आज ही पासा पलट सकती हूं। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूं। क्यों, इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनू भी तो, अनंत देवी ने पूछा। समझ जाओ, विजया बोली। नहीं, स्पष्ट कहो। भटार्क मेरा है, विजया ने कहा। तो, अनंत देवी ने पूछा। उस राह से दूसरों को हटाना होगा। कौन छीन रहा है? अनंत देवी ने पूछा। एक पाप अंक में फंसी हुई निर्लज्ज नारी, क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। विजया की यह बात सुनकर अनंत देवी हंसती हुई बोली, मूर्ख रमणी, तेरा भटार्क केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी? ये सुनकर विजया ने कहा, समझी। और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। ये सुनकर अनंत देवी बात बनाती हुई बोली, क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर बैठना चाहती हो? क्यों, वह भी तो कुमार गुप्त का पुत्र है? विजया ने कहा, हाँ, वह कुमार गुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है, तुमसे उत्पन्न हुई संतान। छी, क्या कहा? समझ कर कहना, अनंत देवी ने कहा। कहती हूं और कहूंगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भटार्क से वंचित नहीं कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को भी छीन लेने वाली स्त्री के प्रति ऋतु सर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में जीर्ण शरीर का अवलंबन वांछनीय नहीं। कह देती हूं, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणा को एक फूंक में उड़ा दूंगी। अनंत देवी ने यह सुनकर कहा, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूं जो अश्वमेघ पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूर्ण मंगवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डावाडोल हो रहा है। उसे तुम एक सामान्य स्त्री, जा ले अपने भटार को, मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्मरण रखना, मैं हूं अनंत देवी, तेरी कूटनीत के कंटकित कानन की देवाग्नि, तेरे गर्व शैल श्रृंग का वज्र। मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र में भी ना बुझे। ये कहती हुई अनंत देवी वहां से चली जाती है। विजया कहती है, मैं कहीं की न रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र, दुर्बल रमणी हृदय थोड़ी आंच में गर्म और शीतल हाथ फेरते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विष उगल देना, जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, जो पराए हैं उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति, यह मन का विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहां मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहां स्वार्थ की भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ देकर चलूं कहां, किधर? उन्मुक्त भाव से ये कहते हुए विजया वहां से प्रस्थान करना चाहती है। तभी पदच्युत नायक का प्रवेश होता है। नायक कहता है, शांत हो। विजया बोली, कौन है? एक सैनिक, नायक ने कहा। दूर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है। नायक ने कहा, क्यों सुंदरी? विजया बोली, क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दंब दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय का लोहों से खेल विडंबना है। किसकी रक्षा, किस दीन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं? नायक बोला, साम्राज्य की रक्षा के लिए। झूठ, तुम सबको जंगली हिस्न पशु होकर जन्म लेना था। डाकू, थोड़े से ठोकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। ये सुनकर नायक स्वागत ही कहता है, पागल हो गई है क्या? विजया बोली, स्नेहमयी देवसेना की शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया, किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए। स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओह, शांत हो, नायक ने कहा। शांति कहां, अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई, उन्हें दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं। अपनी भूल थी, उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मढ़ रखा था, उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर रही थी। अब उसका फल मिला। नायक ने कहा, रमणी, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया सिसकती हुई तभी बोली, मैं अनाथ हूं, निसहाय हूं। नायक बनावटी रूप उतारते हुए कहता है, मैं शर्वनाग हूं, सम्राट का अनुचर हूं, मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूं। क्या, अंतर्वेद के विषयपति शर्वनाग? विजया ने पूछा। हां, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है, भटार की पिशाच लीला सफल होना चाहती है। विजया, चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन न प्रस्तुत कर सकें तो हमें अधीन न होना चाहिए। हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पाएं, सुख पाएं। ये सुनकर विजया कुछ सोचकर बोली, तुमने सच कहा, सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो। इसके बाद दोनों का प्रस्थान होता है। द्वितीय दृश्य, भटार वफ वेफ शिविर में नर्तकी गाती है, भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी, सब रंगों में फिर रही है बिजलियां, नील निरद क्या ना बरसों के कभी, एक झोंका और मलय नील आहा, क्षुद्र कलिका है खिली जाती अभी, कौन मर मर कर जिएगा इस तरह, यह समस्या हल ना होगी क्या कभी। तभी कमला और देवकी का प्रवेश होता है। देवकी बोली, भटार्क, कहां है मेरा सर्वस्व, बता दे, मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहां है? कौन? भटार वफ ने पूछा। कमला ने कहा, कृतघ्न नहीं देखता है, यह वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नरकीय अपराध को क्षमा किया था, जिन्होंने तुझ जैसे घिनौने कीड़े को भी मरने से बचाया था, वही देव प्रतिमा महादेवी देवकी। भटार वफ उन्हें पहचान कर कहता है, कौन? मेरी मां? कमला कहती है, तू कह सकता है, परंतु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूं, जिस जननी की संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए? आ भटार्क, भटारवफ ने तभी कहा, राज माता और मेरी माता। देवकी बोली, बता भटारक, वह आर्यवर्त का रत्न कहाँ है? देश का बिना दाम का सेवक, वह जन साधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है? उससे शत्रुता करते हुए तुझे? देवकी बोल ही रही थी कि तभी कमला ने कहा, बोल दे भटारक। भटार वफ ने कहा, क्या कहूं, कुंभा के क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाली बर्फ से पूछो कि वह कहीं मैं नहीं।
आ गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण,
देवकी गिरती हुई बोली, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कमला उसे संभालती हुई बोली,
देख पिशाच, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले। नीच पुण्य प्रतिभा को, स्त्रियों की गरिमा को धूल में लोटता हुआ देखकर एक बार हृदय खोलकर हंस ले। हा देवी।
भटारवफ भयभीत होकर देखता है और कहता है, क्या? कमला बोली, इस यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार को, पिशाच भूमि को छोड़कर अक्षय लोक को गई और तू जीता रहा, सुखी घरों में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी दुर्दशा कराने के लिए नरक के कीड़े, तू जीता रहा। भटारवफ ने कहा, मां अधिक ना कहो, साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने यह किया। स्कंदगुप्त ना सही, पुरगुप्त सम्राट होगा।
अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर, उसके दर्प में भूलकर, मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है? पामर, तू सम्राटों का नियामक बन गया, मैंने भूल की। सूतिका गृह में ही तेरा गला घोंटकर क्यों ना मार डाला? आत्महत्या के अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित नहीं।
भटारवफ ने कहा, मां क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग किया, मैं इस संघर्ष से अलग हूं, अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट ना पहुंचाऊंगा। ये कहकर उसने तलवार डाल दिया। कमला बोली, तूने विलंब किया भटारक, महादेवी, एक दिन जिसके नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हा दुर्देव। भटारवफ ने तभी ताली बजाई, जिसके बाद सैनिक आते हैं। भटारवफ कहता है, महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राज सम्मान से होनी चाहिए, चलो शीघ्रता करो। इसके बाद देवकी के शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कमला कहती है, भटारक, इस पुण्य चरण के स्पर्श से संभव है तेरे पाप छूट जाएं। तृतीय दृश्य, कश्मीर वेफ न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री और दंडनायक। मातृगुप्त ने कहा, नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद, यह क्या है? देवनंद ने कहा, कुमारा मात्य की जय हो, बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहत धन का पता न लगा सका, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं। मातृगुप्त बोला, फिर किसका है? तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए? प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है, यदि तुम उसकी रक्षा न कर सके तो वह अर्थ तुम्हारी भ्रूति से काट कर इस रमणी को मिलेगा। देवनंद बोला, परंतु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन भर की भ्रति से भी उसका भरना असंभव है। तब राजकोष उसे देगा और तुम उसका फल भोगोगे। मातृगुप्त ने कहा, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है, यह श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्ध शालिनी वैश्या है, यह अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती, फिर मैं कैसे पता लगाऊं, गुप्तचर भी थक गए। देवनंद ने कहा, हाँ, इसका नाम मैं भूल गया, मालिनी। क्या, मालिनी? यह कहकर वो कुछ सोचने लगा। फिर मातृगुप्त ने आगे कहा, अच्छा जाओ, कोषाध्यक्ष को भेज दो। इसके बाद देवनंद का प्रस्थान होता है। मातृगुप्त कहता है,
मालिनी, अवगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूं। ये सुनकर अवगुंठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता हुआ कहता है, तुम कौन हो मालिनी? छलना? नहीं नहीं, भ्रम है। नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूं। अवगुंठन केवल इसीलिए था कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त, मैं वही हूं, मालिनी ने कहा। तुम नहीं मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवता वैश्या, असंभव, परंतु नहीं, वही है मुख। यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी है, पर तुम वही हो। हा दुर्देव, दुर्देव, मालिनी ने कहा, मैं आज तक तुम्हें पूजता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रहा। मूर्ख मैं, आह मालिनी, मेरे शून्य भाग्याकाश के मंदिर का द्वार खोलकर तुम्ही ने उनिधि उषा के सदृश झांका था और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण दिया था। तुम्ही ने मालिनी, तुमने सोने के लिए नंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मालिनी मातृगुप्त के पैरों पर तभी गिरती हुई कहती है, एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त, मैं इतना दृढ़ नहीं हूं मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाऊं, पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी, उसमें ज्वाला ना होगी, धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुंधली होकर सामने आएगी। जाओ, मातृगुप्त ने कहा, जिसके बाद मालिनी का प्रस्थान होता है और चर प्रवेश करता है। चर ने कहा, कुमारा मात्य की जय हो। क्या समाचार है, सम्राट का पता लगा? मातृगुप्त ने पूछा। नहीं, पंचनद हूणों के अधिकार में हैं और वे कश्मीर पर भी आक्रमण करना चाहते हैं, चर ने कहा। यह कहकर चर का प्रस्थान होता है। तभी मातृगुप्त कहते हैं, तो सब गया, मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है। नाचती हुई निहार कणिकाओं पर तीखी किरणों के भाले। ओह, सोचा था कि देवता जाएंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर्य चमकेगा और पुण्य कर्मों से समस्त पाप पंख धुल जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्ति सिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियां किसी आर्य सदगृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन सी भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान देकर संतुष्ट करेगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई अचल हिमालय की भांति सिर ऊंचा किए हुए विश्व का सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य सिंधु में शेष पर्यक शायी सुषुप्तिनाथ जागेंगे, सिंधु में हलचल होगी, रत्नाकर के रत्न राशियां आर्यवर्त की बेला भूमि पर निछावर होंगी, उद्बोधन के गीत गाए हृदय के उद्गार सुनाई जाएंगे। परंतु पासा पलट कर भी न पलटा, प्रवीर उदार हृदय स्कंद गुप्त कहाँ है? तब कश्मीर, तुझसे विदा। ये कहकर मातृगुप्त का भी प्रस्थान होता है। चतुर्थ दृश्य, नगर प्रांत वेफ पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति। प्रख्यात कीर्ति बोला, प्रिय वयस्य, आज तुम्हें आए इतने दिन हुए, क्या सिंघल का राज्य भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है? धातुसेन ने कहा, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है? एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूं बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है। महाबोधि विहार के संघ महास्थविर ने निर्वाण लाभ किया है। उस पद के उपयुक्त भारत भार में केवल प्रख्यात कीर्ति है। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति बोले, राजमित्र मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूं, महास्थिविर बनने के लिए नहीं। इस पर धातुसेन ने कहा, मित्र मैं मात्र गुप्त से मिलना चाहता हूं। प्रख्यात कीर्ति बोले, वह तो विरक्त होकर घूम रहा है, तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। धातुसेन बोला, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे ना? प्रख्यात कीर्ति ने पूछा, जहां तक संभव हो शीघ्र चलो। धातुसेन ने कहा, तभी एक भिक्षु का प्रवेश हुआ। भिक्षु ने कहा, आचार्य महान अनर्थ। प्रख्यात कीर्ति बोले, क्या है, कुछ कहो भी। भिक्षु बोला, विहार के समीप जो चतुष्पद का चैत्य है, वहां कुछ ब्राह्मण बलि करना चाहते हैं, इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। यह सुनकर धातुसेन ने कहा, चलो हम लोग भी चलें, उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। यह कहकर सब वहां से चले जाते हैं। पंचम दृश्य, बिहार वेव समीप चतुष्पद। एक ओर ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता। तभी दंडनायक का प्रवेश होता है। वो कहता है, नागरिक गण, यह समय अंतर विग्रह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है, और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। एक ब्राह्मण ने कहा, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है, कई बार के विताड़ित हूण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं, इन गुप्त शत्रुओं को कृतघ्नता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण बोला, ठीक है, गंगा यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सधर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निसहाय थे, क्या करते, विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाएं और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा, यदि वे हमी से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटाएं, तो हमें उनकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्व नियंता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे ना बैठेगी। आज यहां बलि होगी, हमारे धर्माचरण स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण बोला, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण? तुम्हारी इस हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था, उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था? क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार करना चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। तभी धातुसेन का प्रवेश होता है। वो कहता है, अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मावाद को नष्ट नहीं किया, यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है, वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों? दंडनायक ने कहा, देखो यदि ये हठी लोग तुम्हारे कुछ समझाने से मान जाएं, अन्यथा यहां बलि ना होने दूंगा। ब्राह्मण बोला, क्यों ना होने दोगे, अधार्मिक शासक क्यों ना होने दोगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है, कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके। जो धर्म आचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। आह धर्मदेव, तुम कहां हो? धातुसेन ने कहा, सप्त सिंधु प्रदेश निशंस हूणों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? आपने इसे विचारा है? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं? क्यों एक वर्ण के लोग दूसरों की अर्धकरी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं? लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणा की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन साधारण की संपत्ति नहीं। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसीलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौड़। जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राज शक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्बल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन हो मूर्ख उपदेशक? हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध? तुमको क्या अधिकार है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? इस पर धातुसेन ने कहा, ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी रित और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए साय प्रातः अभिलाषा में भगवान से प्रार्थना करते थे, सर्वापि सुखिना संतु सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख माप्यनुयात। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान की जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति ने कहा, धर्म के अंध भक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है वो भी अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निर्वृत्त होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों की हट धर्मिता से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों के विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। इस पर बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, ठीक तो है ये, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आताताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। हूणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? दंडनायक ने कहा, यही तो बात है नागरिक। तभी प्रख्यात कीर्ति बोले, मैं इस विहार का आचार्य हूं और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूं कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है, किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आए और ब्राह्मणों से पूछे कि क्या आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किसे बोधिसत्व होने की इच्छा है? ये सुनकर बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। तभी प्रख्यात कीर्ति हंसकर कहते हैं, यही आपका धर्मोन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुंदुभी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए, घर लौट जाइए। ये कहकर उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा और उससे कहा, आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। ये कहकर वो सिर झुका लेता है। तभी ब्राह्मण तलवार फेंक कर कहता है, धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इसी संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूंगा। इसके बाद जनता में जय जयकार होती है और सब धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। षष्ठ दृश्य, पथ में विजया और मातृगुप्त। विजया ने कहा, नहीं कविवर, ऐसा नहीं है। कौन? विजया, मातृगुप्त ने पूछा। विजया ने कहा, आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि, गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े, एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त ने फिर से पूछा, कौन? विजया। विजया ने कहा, हां मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में कश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र स्कंद गुप्त, ऐसे सहस्त्रों देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ाइयां लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जगावेंगे। ये सुनकर मातृगुप्त ने कहा, तुम धन्य हो, आज से मैं यही करूंगा। वह लो, चक्रपालित आ रहा है। चक्रपालित का तभी प्रवेश होता है। वो कहता है, लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जल बिंदु, आकाश से मेघ समारोह, अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कणिकाओं की प्रभात लीला मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। बंधु चक्रपालित, मातृगुप्त ने कहा। चक्रपालित ने कहा, कौन? मातृगुप्त। भीम वर्मा तभी सहसा प्रवेश करके कहता है, कहां है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति और श्रवण का भी तभी प्रवेश होता है। प्रख्यात कीर्ति कहते हैं, सब पागल लूटे गए से अनाथ और आश्रयहीन यही तो हैं, यही तो हैं। आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भरण साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पतवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त ने कहा, तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति बोला, संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त ये सुनकर शंका से देखते हुए बोला, क्यों? अहेरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहां भी? परंतु तुम तो... प्रख्यात कीर्ति ने तभी बीच में कहा, संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूं। यह लो प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को पढ़कर तभी मातृगुप्त बोला, धन्य सिंहल के युवराज, श्रमण कह देना मैं आज्ञा अनुसार चलूंगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति बोला, कल्याण हो। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। विजया बोली, कहां चलें हम लोग? उसी जंगल में, मातृगुप्त ने कहा। जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। सप्तम दृश्य, कमला की वुफटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बोला, बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी वट पत्राशाही बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है। करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोच पूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है, परंतु यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व ना हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचरों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी उसका उपयुक्त रक्षक हो। ओ, जाने दो, गया सब कुछ गया। मन बहलाने को कोई वस्तु नहीं रही। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकार पूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे गुप्त जीवन को, जगा दो विमल स्वातंत्र का बस मंत्र फूंको, हमें सब भीत बंधन से छुड़ा दो। सहारा उन उंगलियों का मिले हां, रसीले राग में मन को मिला दो। तुम ही सब हो, इसी की चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। ये कहकर प्रार्थना में वो झुकता है, तभी उन्मक्त भाव से शर्वनाग का प्रवेश होता है। शर्वनाग ने कहा, छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को शूल के मांस की तरह सेंकने लगे। जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हूणों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहों को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना। देखते हुए भी न देखा, आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते थे कभी आधी आह पर, अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं। देश के हरे कानन चिता बन रहे हैं, धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है, पिघल कर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता? अरे जड़, मूक बधिर प्रकृति के टीले। ये कहकर वो उन्मक्त भाव से ही प्रस्थान करता है। स्कंदगुप्त कहता है, कौन है यह शर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हूणों से पदाक्रांत हुआ? अरे आर्यावर्त के दुर्दैव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है? भगवान, यह अधोन्मत शर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है, कितना विभत्स है। सिंहों की बिहार स्थली में श्रृंगाल वृंद सड़ी लाथ नोच रहे हैं। तभी पगली रामा का भी प्रवेश हुआ। वो स्कंद को देखकर बोली, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा? मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूटेंगी, देख तो। ये कहते हुए वो हाथ बढ़ाती है। तभी स्कंदगुप्त पूछते हैं, कौन? रामा? रामा ने आश्चर्य से कहा, मैं रामा हूं, हां, जिसकी संतान को हूणों ने पीस डाला। मेरी संतान, इन अभागों की सी वे नहीं थी, वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसती हुई कूद पड़ती थी। तुम लुटेरे भी नहीं, कायर भी नहीं, अकर्मण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो है जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कंपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोएं खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थीं। वही स्कंद, रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और आर्यावर्त की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ, तुम निष्प्रभ निस्तेज उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो। इसके बाद रामा का भी प्रस्थान होता है। स्कंदगुप्त बैठकर कहता है, आह मैं वही स्कंद हूं, अकेला निसहाय। तभी कमला भी कुटी खोलकर बाहर निकलती है। वो कहती है, कौन कहता है कि तुम अकेले हो, समग्र संसार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर, तुम कौन? भटार की जननी? स्कंदगुप्त ने पूछा। तभी नेपथ्य से बचाओ बचाओ का क्रंदन शब्द सुनाई देता है। स्कंदगुप्त फिर से पूछते हैं, कौन? देवसेना का सा शब्द? मेरा खड़क कहाँ है? ये कहते हुए वो वहां से जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए तभी हूण का प्रवेश होता है। देवसेना कहती है,
भीम भाई, मुझे इस अत्याचारी से बचाओ, कहां गए?
हूण ने कहा, कौन तुझे बचाता है? ये कहकर वो देवसेना को पकड़ना चाहता है। वहीं देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहती है। पर्णदत्त सहसा एक ओर से तभी आकर एक हाथ से हूण की गर्दन, दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हूण कहता है, क्षमा हो। पर्णदत्त कहता है, अत्याचारी, जा तुझे छोड़ देता हूं। आ बेटी, हम लोग चलें महादेवी की समाधि पर। कहां? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास? कमला ने पूछा। हां। कौन? कमला देवी? हां वही अभागिनी, कमला ने कहा। अच्छा, जाती हूं, फिर मिलूंगी, देवसेना ने कहा। पर्णदत्त के साथ तभी देवसेना का प्रस्थान होता है और स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, कोई नहीं मिला, कहां से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर? ओह। कमला तभी बोली, वह सुरक्षित है, घबराएं नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। ये सुनकर स्कंदगुप्त ने कहा, मां मेरी जननी, तू भी ना रही? हां। ये कहकर वो मूर्छित हो जाता है। तभी कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।